ओम शांति। आज का क्लास क्या है? साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए ना बाप समान कैसे बने, तो आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, ज्ञानामृत प्रेस जो आप नीचे देखते हैं शांति वन में, उसमें जो ईश्वरीय साहित्य का प्रकाशन होता है वो आप संभालते हैं, और ज्ञानामृत निकलती है उसके संपादकीय लेख में भी देखते होंगे, वर्ल्ड रिन्यूअल जो इंग्लिश पत्रिका है, और विशेष आपका रुचि जो शुरू से रहा है वो पढ़ने लिखने और बाबा के ज्ञान के चित्रों को बना करके, जैसे दिल्ली का पहले एक जो चित्रशाला बनी थी उसमें आपको बाबा ने भेजा था, तो आप जब 20 वर्ष के थे तभी आप बाबा के घर में अपनी छोटी आयु में आ गए थे, और साकार बाबा के समय से मैं 61 से समर्पित जीवन जी रहे हैं। तो एक क्लास हुई है भाई साहब इनको बाबा के लिए, साकार बाबा के लिए। अभी साकार बाबा के लिए कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है पूछने की उनके जीवन से? प्रश्न है तो पहले ही पूछ लो, ताकि भाई साहब उनका उत्तर अपनी क्लास में ही शामिल कर लेंगे। किसी को कोई दिल नहीं है बाबा के बारे में जानने की? वो तो बताएंगे ही, पर उनका अनुभव तो बहुत सारा है, वो क्या क्या बताएंगे। हाँ, लेकिन आपको कुछ चाहिए? वंडरफुल है, किसको कुछ दिल ही नहीं है बाबा के लिए?
संतुष्ट है।
संतुष्ट नहीं है?
नहीं, संतुष्ट है।
नहीं भाई, अच्छा मैं पूछती हूँ, बाबा के छोटे कमरा है ना, उसमें दो तकिए काहे रखे हैं बताओ? फिर लेटर वाली जगह तो अलग है ना, नीचे बैठने की तो अलग है, बताओ? सब जानते हैं तो बताओ। देखो सब कुछ भी समझा देंगे भाई साहब, आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत अच्छे अच्छे मीठी मीठी कहानी बनाने की भी ताकत है ना, कुछ भी समझा देते हैं हम जी। तो रियली में बाबा के और समीप पाने के लिए उनके साकार दर्शन की इन दुर्लभ आंखों से है, स्मृतियों से, बाबा के नादि रत्नों से हम कुछ सुनेंगे, ठीक है भाई साहब? ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी और आप सभी बहुत खुशकिस्मत है कि आप कहां पधारे हैं, उस धरणी पर पधारे हैं जहां स्वयं शिव बाबा ने साकार तन में आकर के विचरण किया, ज्ञान गंगा भाई बच्चों से मिले, बच्चों को भोजन खिलाया, बच्चों के साथ खेला कूदा, बहुत चरित्र भगवान के इस धरनी पर हुए जो हमने स्वयं देखी भी सही। और उस धरनी पर आप आए हैं योग भट्टी करने के लिए, योग भट्टी तो नाम है, इस धरनी पर आप चलेंगे फिरेंगे खाएंगे भोजन करेंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, वो बाबा की याद में रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब समय तो बीतता चला जा रहा है, जो आज से हम जब आए थे 58 साल पहले, आज से कंपेयर करते हैं तो क्या दिखता है, बहुत बहुत अंतर है। कभी हमने सोचा नहीं था सच्ची कि इतने साल हम ज्ञान में, इतने साल चलेंगे हम, इतना विस्तार हो जाएगा, और बाबा मम्मा साकार में हमारे साथ नहीं रहेंगे, कभी किसी को ख्वाबो ख्याल भी नहीं था, किसी को भी नहीं, चाहे बड़े बड़े महारथी दादियां दीदियां जो भी हैं, किसी ने नहीं सोचा था, हमने भी नहीं। हम बाबा जब मिलते थे हमने कहा हम तो कोई बहुत दूर की प्लानिंग नहीं करते थे, बस अभी विनाश होगा और हम सब मिलके इकट्ठे बाबा के साथ उड़ के जाएंगे, जैसे ना गीता में मच्छरों माफिक आत्मा आ रही है परम धाम में, वो मेरे मुंह में आ रही है, हम परम धाम में इकट्ठे जाएंगे। कभी किसी के मन में ये विचार नहीं आया था कि साकार बाबा इस प्रकार से साकार में नहीं रहेंगे, अव्यक्त पाठ चलेगा, किसी को क्या लेता। तो हम भी 58 साल पहले गया, आज के टॉपिक के दो पार्ट है, एक है थोड़ा बहुत अनुभव बाबा के साथ जो था, शायद पहले आप आए थे, आए हैं पहले साल वाले के, फर्स्ट टाइम आइए, फर्स्ट है तो नहीं सुना वो आपने, और साथ साथ फिर हम बाप समान बने कैसे, कैसे बने बाप समान। देखो और गुरु लोग तो क्या करते हैं, चेला बनेंगे, शिष्य बनेंगे, वो बनेंगे, यहां बाबा क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं हमको, आप समान बनो, मेरे समान बनो। यानी वो हमारा इस ईश्वर विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, बाप समान तो अभी है यानी संगम युग का, बनना क्या है हमको, जो कितना ऊंचा लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलो तो कितना बड़ा हाईएस्ट देखा जाए तो लक्ष्य है। और यहां अब बनना है बाप समान, हमारे कितने बाप है बताओ, एक लौकिक तो सबका है ही है, वो तो पूछने की बात भी नहीं है, और हमारे कितने हैं, दो, एक है शिव बाबा, एक है ब्रह्मा बाबा। अब देखो शिव बाबा तो एक तो मुरली में आया था, शिव बाबा तो बेहद का मालिक है, हाईएस्ट अथॉरिटी, और ब्रह्मा बाबा उसके साथ है, तो किस बाप समान बनना है, यानी शिव बाप समान बनना है या ब्रह्मा बाप समान बनना है, बोलो है जी, ब्रह्मा बाप समान। देखिए हम बताएं आपको, हम जब बाबा बोलते हैं ना बाबा, उसमें दोनों आ जाते हैं, कहीं किसी किसी लैंग्वेज में बा और बा, पिता को बाबा भी बा भी कहते हैं, तो बा और बा मिलकर के दोनों बाप इकट्ठे हो जाते हैं। हम बताएं आपको, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमने खुद देखा। देखिए एक वो एक शायर ने भी कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम माने एडम ब्रह्मा बाबा, उसको हम खुदा नहीं कह सकते, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम, लेकिन आदम यानी खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है, ये हम बताए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया तो नूर इलाही कहते हैं उर्दू में उसको, नूर, नूर उसके अंदर आया तो नूर से जुदा तो है नहीं, शिव बाबा से जुदा कैसे हुआ। हम जब सुनते थे बाबा के सामने बैठ करके, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें शिव बाबा है या केवल ब्रह्मा बाबा है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, दोनों साथ साथ थे, तो हमको बनना ब्या बाबा समान। अब उसमें अब उसको मत करो डिफ्रेंशिएट, क्या वो बनना है या वो बनना है, जो बाबा हमने देखा, जो बाबा हम उसकी सुनी बातें, उस बाबा के समान हमको बनना है, ये है। अब बाबा कैसे थे, अब हम थोड़ा वो भी बता दें आपको, आपने सुना तो होगा, पहले भी सुना होगा। देखिए जब सिंध में ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो क्या हुआ, आपको मालूम हो उस समय ये देखने में आया कि बिल्कुल चेंज, ब्रह्मा बाबा की पहले भी जीवन ठीक थी, अच्छी जीवन थी, सात्विक जीवन थी, फराग दिल जीवन थी, यानी बड़े बेफिकर थे, हर बात में अग्रणी थे, और वो उसको दादा कहते थे, दादा माने बड़ा, यानी जो बड़ा होता मुखी कहते थे, वो सब था। लेकिन जब उनमें प्रवेशता हुई सब चीज बदल गई, उनको क्या साक्षात्कार हुआ आपको मालूम है ना, उनको साक्षात्कार, दो मुख्य साक्षात्कार हुए, कौन से, एक देखा विनाश, उस वक्त 1936 या 7 जो भी था, महाविनाश देखा, जबकि उस वक्त कोई ऐसे चिन्ह नहीं थे, लड़ाई वो लड़ाइयां तो होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, सेकंड फिर शुरू होने वाली थी, वो तो देखा, लेकिन उनको महाविनाश दिखाई दिया कि प्रकृति प्रकृति आपदाएं आ रही है, आपस में सिविल वार हो रही है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, धरती फट रही है, भूचाल आ रहे हैं, ऐसा देखा उनको लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें आई, लोग बहुत दुखी है। बाबा ने उस वक्त देखा ये, तब कहा कि नहीं अब ये तो सहन योग्य नहीं था, वो जो सहन नहीं कर सके। तो दूसरा क्या देखा उन्होंने, स्थापना देखी कि कोई सितारे ऊपर से आते हैं और कोई बन जाता है प्रिंस, कोई बनता है प्रिंसेस, एक नई दुनिया का देखा। तो जब से बाबा ने ये देखा, विनाश देखा और ये चीज देखी, और उनको ऐसा फीलिंग आई कि मुझे ये करना है, कुछ मुझे करना है, तो पहला कदम क्या उठाया बोलो, फर्स्ट स्टेप जो क्या उठाया उन्होंने, जो अभी कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था, बाबा ने कहा बच्चे मुरली में था कि मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, अपना जो बिजनेस था वो बंद कर दिया, क्लोज, इतना बड़ा बिजनेस डायमंड का वो बंद कर दिया, और अपने जो भागीदार से कहा कि जो भी इसका देना है दे दो, यदि बाबा चाहते तो बिजनेस चलता रहता, उसकी इनकम आती रहती, यज्ञ भी चल सकता था। बाबा ने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया और उसका जितना पैसा था ले लिया, जो यज्ञ में लगा दिया, सारे परिवार को ज्ञान मिलाया, भले वो बाद में चले नहीं चले, बच्चों को, अपनी वो लड़की को, बहू को, सब पत्नी को पूरा समर्पण करा दिया, बच्चों को भी, ये सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, मकान दुकान जो कुछ भी था सब कुछ निछावर कर दिया, अपने को भी निछावर कर दिया, पहला स्टेप। बाबा ने ये भी कहा क्यों किया ये, मुरली में था, बाबा ने कहा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि राजा रजवाड़े भी छोड़ दिए, बड़ा कनेक्शन था, वो क्वीन एलिजाबेथ से कनेक्शन था, उनके वो बुलाते थे भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, अभी भी जो म्यूजियम है लंदन में बाबा की ज्वेलरी जो वो बचती है वहां वो पड़ी हुई है, दिखाते हैं, वो इतना कनेक्शन था कि उनको भी छोड़ दिया। क्या बाबा पूछा मैंने क्यों किया ये, आप बताओ क्यों किया, बोलो ऐसा क्यों किया, सब कुछ, ये भी नहीं सोचा कि मेरे लौकिक जो है बच्चे कहां जाएंगे, पत्नी कहां जाएगी, ये क्या होगा, क्या क्यों किया बताओ। बाबा ने जवाब दिया अपनी मुरली में, ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए, ये रिप्लाई है इसका, कि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए, बताइए। तो फिर बाबा ने उसी थोड़ी देर मुरली में फिर कहा बच्चे ओहो ये तो राजधानी स्थापन होनी है, राजधानी स्थापन होने में तो टाइम लगेगा, यानी जैसे हम ज्ञान में आए कि विराज सामने खड़ा है, तो बाबा को भी ऐसे लगा, यानी कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बता दिया नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है। यही आप ये देख लीजिए, वो उस वक्त यही फिर बाबा को बाद में वो रिवील हुआ, ओहो ये तो बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है, इसमें समय लगना है, देखो अभी समय लग रहा है, उसकी प्लानिंग हुई। अब देखो बड़ा समय कैसे लगना है, मैंने एक दफा बात हो रही थी, मैं दादी जी से पूछा, दादी गुलदार जी से, दादी ये बताओ आप छोटे 8-9 साल के, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 7 साल, हमारी दादी का उम्र 6 साल की एक अभी दादी है, सब छोटे छोटे छोटों को बाबा ने क्या क्यों बुलाया, आप विचार करो भाई, अगर जो ज्ञान योग होता है वो तो बुजुर्गों के जो होता है, 50 साल के हो, 40 साल के हो, 60 साल के हो, बल्कि और ही वानप्रस्थी के होता है, तो वास्तव में इसमें बहुत बड़ी बाबा की प्लानिंग थी। अगर मानो 50 साल के होते तो आज कहां होते, विचार करो, उस तो होते ही नहीं, वो तो ये 6-8 साल कितने अभी तक दादियां बैठी है, कुछ अभी 8 दादियां हैं हमारे पास, अगर ये बहुत और उम्र, देखो दादी जानकी की 20 साल की थी, बहुत उम्र थोड़ी है, दादी प्रकाशमणि 14-15 साल की, मम्मा 16 साल की, इससे कोई ज्यादा तो था ही नहीं, भाभा की प्लानिंग है इसमें, उनको ट्रेन किया, बड़ा किया, उनको वो तपस्या कराई, जो कहां कहां से अब कहां कहां पहुंच गए बताओ। अब हजारों बहने, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ सिस्टर्स बैठे हैं कहीं कहीं, कोई कहां किसी शहर में है, कोई किसी मोहल्ले में है, कोई कहीं है, कितनी सेवा हो रही है। स्थापना का ये कार्य था, इसलिए बाबा की प्लानिंग देखो कितनी जबरदस्त है। हम भी कब है, हम केवल 20 साल के थे, अगर हम 50 साल के होते तो आज चले गए होते, स्थापना में क्या ऐसा। अभी भी यंग लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बाबा की जो प्लानिंग थी, मैं ये बता रहा था बाबा ने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया कि अपना सब कुछ निछावर कर दिया, कुछ भी रखा नहीं, उसके बाद अपने हाथ में कभी कोई पैसा नहीं लिया। कभी कोई आते थे ना बड़े बड़े लोग, ये वो चाहते थे हमारे सामने कि बाबा के हाथ में ने, बाबा कभी हाथ फैलाते नहीं, मम्मा लेती थी या यीशु दादी लेती थी, बाबा कभी हाथ में पैसा नहीं लेते थे। तो देखिए ये पहला कदम यह है, अगर हमने बाप समान बनना है क्या करना चाहिए, बोलो। जबरदस्त बात है ये, बहुत बड़ा स्टेप है। ये नहीं कि हमको कोई वो करना है, घर बार छोड़ने की बात भी नहीं है, परंतु कम से कम ट्रस्टी बनकर तो चलना है। ये करना है कि ये बाबा का है, मेरा नहीं है, ये उसका संभाल रहा हूं, उसकी दुकान संभाल रहा हूं, उसका घर है उसका हो, ये वृत्ति तो बदलनी है। अब वो जमाना तो गया, हम जब आए थे तो बाबा कहते थे, स्वीकार करते थे, हाँ ठीक है, लेकिन अब ये जमाना तो है कि हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम ट्रस्टी बन के रहे, हम समझे ये बाबा का है, तो जिससे क्या फिर भी ऐसा करने से भी जैसे कि वो हम बाबा का समझते हैं, तो ठीक प्रकार से उस वृत्ति से चलेंगे तो अंत में हमें स्वयं बाबा के और कोई याद नहीं हो। हम तो कहते हैं संकल्प में बाबा 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 हो, उसके स्वयं कुछ ना हो, वाचा में क्या हो, बाबा का ज्ञान हो, और हम जब कर्म करते हैं ऐसा करें कि ये बाबा ही करा रहा है या बाबा के लिए ही कर रहा हूं, मनसा वाचा कर्म नाम, ऐसा करेंगे तो अंत में स्वयं बाबा के और कुछ याद नहीं आएगा। ये पुरुषार्थ है। देखिए सत्युग त्रेता में कोई पुरुषार्थ नहीं है ना, कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ पुरुषार्थ ही, जो भी कार्य है वो है कार्य, हाबी है। अगर खेती भी करेंगे जो हाबी, कुछ तो करेंगे ऐसे हाबी, पढ़ाई भी करेंगे ऐसे हाबी, हाबी में कोई मुश्किल नहीं होता, वो खुशी खुशी काम होता है। मकान भी बनाएंगे वो भी ऐसे जैसे कि खुशी खुशी में, कोई मुश्किल बात नहीं आएगी। यहां पर तो बहुत वो करना पड़ता है बहुत वो, तो सात्विक में कोई पुरुषार्थ नहीं है, नो पुरुषार्थ। यहां की प्रारब्ध कोई हर एक कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई माया नहीं, कोई प्रकृति सब ठीक, कुछ भी नहीं, एकदम समूथ लाइफ होती है, बड़ी खुशहाल लाइफ होती है। पुरुषार्थ करने की बात नहीं है, दुख दर्द तो है नहीं, त्रेता में भी नहीं है। द्वापर में हम भक्ति करते हैं, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढते कहां है, जब जानते नहीं तो ढूंढे कहां, मानो ऐसे वो ढूंढा जाता है उसको जिसको कुछ जानता हो, मानो आप कोई चीज गुम हो जाए तो आप उसको ढूंढोगे, पता भी भाई ये चीज गुम हो गई है। परमात्मा को जानते नहीं थे ऐसी भक्ति करते हैं, इसलिए गिरावट होती आती है, गिरावट होती आती है, पुरुषार्थ ऐसे चलता है। और कल युग में तो अति गिरावट होती है, पुरुषार्थ क्या, यहां तो झगड़ा बहुत है। अब पुरुषार्थ का समय है संगम युग, इस समय परम पिता परमात्मा शिव बाबा करके हमको पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। अब वो कहते हैं मैं बाप समान बनो, मेरे जैसा बनो और दूसरों को भी बनाओ। पहले बाबा कहते थे आप समान बनाओ, अब बाबा दादियां कहती है बाप समान बनाओ, औरों को भी, यदि औरों को भी बाप समान बनाओ, तो उसको हम देखें क्या करें, हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। एक पहला स्टेप तो ये है। दूसरा देखिए, जब से बाबा में, शिव बाबा ने बाबा में प्रवेश किया तो क्या हुआ, लगातार कितने वर्षों से, सन 36-37 से लेकर के यानी जब तक बाबा साकार में थे उनके मुख से क्या निकलता था, ज्ञान अमृत निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा। एक दिन भी ज्ञान की क्लास बाबा ने मिस नहीं की, यानी ना बच्चों को ज्ञान ना सुनाया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी हम कहते ना बाबा का जो पहला गुण है ज्ञान के सागर, शिव बाबा का गुण भी है साथ में, ब्रह्मा बाबा भी साथ साथ थे तो उनका भी गुण भी है। देखिए इतने साल तक ज्ञान सुनाते रहे बच्चों को, कभी तबीयत नहीं ठीक तो लिख लिख के भी भेजते रहे, तो ज्ञान जो था वो बाबा ज्ञान के सागर थे। और अंत तक 18 जनवरी 1969 के 9 बजे से पहले एक दो घंटे पहले भी उनके मुख से ज्ञान अमृत बह रहा था। आप बताइए, आज हम किसी को थोड़ी खांसी भी होती है चलो आज क्लास नहीं करते क्लास में नहीं जाते, परंतु ज्ञान के सागर बाबा थे तो हमको भी ज्ञान का कलेक्शन करना चाहिए, ज्ञान संग्रह करना चाहिए, हम भी मास्टर ज्ञान के सागर बने। हम देखें कि हम अब हमारा मुरली पर अटेंशन है कि नहीं है, हम जो मुरली के अलावा भी अव्यक्त वाणियां कितनी हैं वो उसको हम स्टडी करते, स्टूडेंट लाइफ हमारी है कि नहीं है ये देखें। हम कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, परमात्मा शिव बाबा हमारा टीचर है तो हम स्टूडेंट हैं। आप देखें हमारी स्टूडेंट लाइफ कहाँ तक है, हम कुछ पढ़ते हैं यहां से क्लास के बाद हम अपने घर जाते हैं होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, या हम कोई वो उसको रिवाइज भी करते हैं कि नहीं करते हैं। इतना हम ज्ञान का सिलेक्शन कलेक्शन कर लें संग्रह कर लें कि जिससे कि कभी भी कुछ यानी ज्ञान टपकता रहे हमारे अंदर से भी ज्ञान टपके, कोई मिलता है कुछ कैसे हो तो है तो उसको भी हम ज्ञान की बातें सुना सके। तो जैसे बाबा हम कहते बाप समान बनो तो हम भी ज्ञान के तरीके से भी हम बाप समान बनना, उस प्रकार से हमारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता रहे ये अवश्य करें। जितने भी देखिए, मैं उस दिन दादी जानकी जी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था देखो हम बाबा को याद करते हैं गुणों के रूप में, हम तो किसको देखेंगे, शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, ये गुण है उनमें। और अगर हमें संबंधों से याद करना है बाबा को तो कैसे याद करेंगे, वो तो निराकार ज्योति बिंदु है, तब हम ब्रह्मा बाबा को देखेंगे। मैंने अपनी राय दी, ऐसे चिट चैट हो रही थी, दादी कहे नहीं गुण भी प्रत्यक्ष कैसे हुए, भाई शिव बाबा में ये गुण हैं, ज्ञान का सागर तो ज्ञान की अमृत धारा कहां से भाई, और उसके बाद पवित्रता का सागर है तो वो भी कैसे। तो चाहे गुण थे चाहे वो संबंध है उसमें साथ साथ ब्रह्मा बाबा तो साथ साथ है ही, हम याद जब करते हैं वो सागर है तो साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों दिखाई देते हैं। जब हम कहते हैं वो संबंध है हमारा, यानी वो माता है पिता है शिक्षक है सतगुरु है सखा है स्वामी है साजन है सर्जन है बच्चा है माशूक है, ये हमारे 9 संबंध हम उसको याद करते हैं, तब भी सामने कौन आता है, तब भी सामने हमारे ब्रह्मा बाबा अवश्य आते हैं। तो चाहे हम गुणों से याद करें चाहे हम वो संबंधों से याद करें, सामने तो हमारे ब्रह्मा बाबा तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम क्या, मैंने कहा दादी जी मैं अब याद करता हूं, बाबा कहते हैं देखते हुए मत देखो, अभी आप बैठे मैं आपको देख रहा हूं, बाबा मुरली में कहता है इस दुनिया की कोई चीज भी मत देखो, मैं देखता हूं तो आप भी देख रहे हैं, सोफा भी देख रहा है, ये भी देख रहा है वो भी देख रहा है, हम कैसे करें। हाँ आंख बंद करते हैं तो सब खत्म हो जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सामने दिखा देता है। दादी कहती नहीं कि यहां आंख खुली हो भी और ये सब देख रहे हैं वो ना दिखे, इनको देखते हुए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को देखो। तो इस प्रकार बाबा ने भी इस पर ये पुरुषार्थ किया इस दुनिया में, जब भी कोई मिले, मैं जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिला देखो वही दो बातें कही जो बाबा को साक्षात्कार वो हुआ। मैं अभी इंजीनियरिंग में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग था और डिग्री कोर्स हम शुरू किया हुआ था, बाबा से मिलने आए, पहला वरदान बाबा का क्या था, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। अब बताइए क्यों, नशा था कि ये नई दुनिया आ रही है और पुरानी दुनिया जा रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। मेरे से छुपाया नहीं कि अभी छोटा 10-15 दिन का है, स्पष्ट कह दिया विनाश सामने खड़ा है। जो कह स्थापना और विनाश, ये पढ़ाई काम नहीं आएगी, तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और लगता भी था सामने विनाश लगता था, जैसे आज भी लगता है ना विनाश कभी भी हो सकता है। अभी भूचाल आया, देखो अभी 3 साल में 3 बातें होगी। पहले साल कहाँ आया था? उत्तराखंड में जबरदस्त वो था। आप माने को जो बाबा कहते हैं ना हाहाकार, जो बाबा को सुनाई दी थी हाहाकार थी, वो देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आया है, उसमें जगह है 3 की, एक को छोड़ के मरता हुआ जा रहे हैं तो 3 को लेके जा रहे हैं। अभी हमारे कश्मीर में आया हुआ था एक भाई वहां बीके, वहां से यहां आया, वो फंस गया कहीं पर, वो तीसरी मंजिल पर बैठा था। उनके पास एक जग पानी था, 2 थे और एक चावल का वो था, इतना सा चावल का होता ना जैसे वो, और 5-7 दिन वो खाते रहे और चाय पानी पीते रहे थोड़ा थोड़ा करके। उनने साफ कहा चारों तरफ हाहाकार था, बड़ी आवाजें आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे विनाश, जो बाबा मुरली में कहता था कि मैंने देखा सब वो दिखाई दे रहा था, लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, बचाने वाला कोई नहीं था। ऐसा अभी फिर देखो काठमांडू में हुआ, कितने लोग मर गए। अभी बारी किसकी है पता नहीं, किसकी बारी आएगी, ये है होगा, हम बताएं आपको, इट विल हैपन। भगवानो वाच, इस दुनिया में जो चीज है अभी उसको देख रहे हो, वो कभी वो होगी नहीं सत्युग में, सब कुछ चेंज होगा। तो बताइए कैसे चेंज होगा, प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है, वो तो बिल्कुल ही सफाई करने के लिए तैयार है। तो क्या करना है, जब बाबा ने मुझे ये कहा यही कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी और इसको तुम यानी और एक कलयुग जाएगा, जो भी बाबा ने बताया, तो मैंने कहा बात तो राइट है, क्यों राइट है, जब बात राइट है कि हमने जब ज्ञान सुना हुआ था कि इतना वंडरफुल नॉलेज, आप देखो ज्ञान को देखो, आप भी उसका विचार करो, इतना वैल्यूएबल नॉलेज है, इतना वंडरफुल है, इतना एक्सपीरियंसेबल है, इतना प्रैक्टिकेबल है, इतना रैशनल है, भक्ति का अंश नहीं है, आप विचार करो दुनिया क्या कहती है और बाबा क्या कहते हैं। रोज बाबा की मूल्य हमें साधारण लगती है, लेकिन इतनी जबरदस्त होती है बात कि वो दुनिया कहती है वो लाखों वर्ष का है, बाबा कहता है केवल 5,000 वर्ष का, सिंपल। आप देखो हमारे शास्त्रों में क्या है, इतनी बड़ी रामायण लिख दी, राम था, रावण था, हनुमान था, वो था, चढ़ाई की, अयोध्या थी, लंका पर थी, और बाबा ने सारी हवा निकाल दी कि रावण ऐसा कभी था ही नहीं, सारा रामायण खत्म कर दी। आप विचार करो कितनी रैशनल बात है, न ऐसा कोई रावण था, न ऐसी कोई लंका थी, सीता तुम आत्मा हो बाबा कहते हैं, और तुम आत्मा जब मुझे भूलती हो तो रावण के 5 विकारों की जेल में चली जाती हो, मैं जब आता हूं राम तुमको विकारों से हटा करके अयोध्या सत्युग में ले चलता हूं। ये छोटी सी कहानी है, उन्होंने कितनी कहानियां बना दी, सारा खत्म कर दिया। फिर वो महाभारत देखी, इतनी बड़ी महाभारत रोज टीवी में देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाबा ने गीता का भगवान श्री कृष्ण तो है ही नहीं, और द्वापर के अंत में हुआ ही नहीं, आप बताओ कितनी जबरदस्त रेवल्यूशन है, कितनी वंडरफुल बातें हैं, दुनिया क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं। वो रोज गंगा की सफाई कर रहे हैं ना, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, चलो सफाई करना अच्छी बात है, बाबा कहते हैं इसमें नहाने से पतित से पावन बनेंगे नहीं, आप बताइए। यानी कितनी बाबा ने वंडरफुल नॉलेज हमको दी है, उस ज्ञान को सुन करके हमें वो उसे लगता है कि ज्ञान सागर ही दे सकता है। जब हम मिलने पहले दफा है तो ज्ञान सागर से मिलने आए, जब बाबा ने ये कहा कि निश्चय हो गया, और भी बातें निश्चय बहुत हुई, देखा कि यहां प्योरिटी सिखाते हैं, आप तो प्योरिटी सारे कहीं देख लो, किसी संस्था में कहीं पवित्रता का नाम निशान नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी वो कहते हैं, बाबा कहते नहीं, जो सिंगल है वो सिंगल रहे, 2 मत बनो, भगवान उवाच, अगर गलती से डबल हो गया तो 2 से 3 मत बनो, जो भी है वही स्टॉप करो, बाबा कहते हैं। भगवान बाबा के महावाक्य कितने अथॉरिटी और पावरफुल है बताओ। तो कहने का मतलब है जब ये निश्चय हो गया और बाबा ने कहा ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, हमने सोच लिया भगवान आया है। आप सभी कहते ना कौन आया है, शिव बाबा आया है, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, कलयुग जाएगा, सत्युग आएगा, संगम का थोड़ा समय बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए बोलिए। हमने वो तभी सोचा था आज से 58 साल पहले, जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, हम वही कार्य करेंगे जो बाबा ने ही किया है। तो तभी से हम लगे रहे, तब से उसी 58 साल से बाबा ने कोई कई प्रकार के कार्य दिए, कई वो कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा, कभी कुछ काम दिया, कभी कुछ काम दिया, उस जो बाबा ने कहा हम उस उन कार्य को करते चले जाए, और धीरे धीरे करते करते आज शांति मन में भी 23-24 साल से हम रह रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है बाबा का पहला जो था कि स्थापना और विनाश, विनाश सामने खड़ा है, अब थोड़ा हमारे भाई बहनों में विनाश का पॉइंट ढीला हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, अपना फिक्स डिपॉजिट तो रख लें, कभी काम आएगा, ये होगा वो, कई बातें हैं। हम कहते नहीं, विनाश तो होना ही है, भगवान वाच, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, और दूसरा अपना कभी विनाश हो जाए तो उसको कोई कह सकते नहीं, एक विनाश ये भी तो है। इसीलिए जितना हम जल्दी हो सके बाबा को फॉलो करके, उनके स्टेप में स्टेप रख करके बाप समान बने। दूसरा देखो बाबा ने क्या, जब हमसे बाप समान बने, एक और पुरुषार्थ बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने जब वो आए, जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उनने प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका बहुत अभ्यास किया, वो सब डायरियों पर, सब किसी चीज पर हमेशा लिखते रहते थे मैं आत्मा हूं। हमने भी ऐसे किया, हमें नहीं मालूम था कि बाबा ने ऐसे किया, हम भी जब ज्ञान में आए, हमें जब किसी ने ज्ञान सुनाया आत्मा हो, हमने पहले माना नहीं कि हम आत्मा का है, हम तो शरीर है, ये एक तो पुर्जा है, एक मशीनरी है, जब ये कोई पुर्जा खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा, वो मशीनरी फेल हो जाएगी, हमें भी ऐसा कुछ वो नहीं था, परंतु जब ये निश्चय बैठ गया मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा हूं, इसका बाबा ने बहुत अभ्यास किया, तो हमें भी अभ्यास करना है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अभी भी मैं आत्मा हूं, इसका वो क्या कहता है, अंदर अंदर अभ्यास चलता रहे, ये सोल कॉन्शियसनेस का देही अभिमानी बनने का बाबा ने अभ्यास किया, हमको भी इसका बहुत बहुत अभ्यास करना है, ताकि दूसरा स्टेप बाबा का यह है कि हम इसका अभ्यास करें। देखिए बाबा बन गए कितने, 32 साल लगे बाबा पुरुषार्थ करते करते, ब्रह्मा बाबा को भले शिव बाबा प्रवेश किया तो उनको अजूरा मिला, उसका बाबा कहता ना मुझे रेंट मिला, मेरे इस रथ का उन्होंने वो किया, लोन लिया तो मुझे उसका भी कुछ एवजा मिला या अजूरा मिला, लेकिन पुरुषार्थ तो फिर भी करना पड़ा बहुत उनको। देखिए आप बताइए, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में सिंध भी आया तो सारी दुनिया के खिलाफ थी, सुन लो, गवर्नमेंट खिलाफ, जुडिशरी खिलाफ, अपने पब्लिक भी खिलाफ, साधु संत भी खिलाफ, लेकिन उनके साथ कौन था, स्वयं शिव बाबा और हमारी कुछ थोड़ी 300-400 भाई बहन माताएं ज्यादा वो थी, उनकी उनके साथ साथ देने वाले वो, तो हम जब दादियों को देखते हैं बड़ा वो आता है कि देखो उस समय जब हमारे बाबा के सब दुनिया खिलाफ थी, हमारी ये दादियां हमारे ये भाई उनका उनके साथ थे, उनके भले बाबा उनके साथ है या वो उनके साथ थे, बात एक ही है, कम बात नहीं है। ऐसे मौके पर जबकि इतना उनके खिलाफ लोग बोल रहे थे, तब इन दादियों ने, बहनों ने, भाइयों ने उनका साथ दिया, पहले तो ये किया, फिर पुरुषार्थ किया, फिर देखिए 32 साल तक पुरुषार्थ करते करते बाबा कर्मातीत फरिश्ता बन गए, कर्मातीत फरिश्ता, अंत में स्वयं शिव बाबा के और कोई याद नहीं, एक बस न लौकिक था, अलौकिक भी, एक दादी के हाथ में हाथ दिया और पंछी उड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है, कुछ कष्ट तकलीफ ना हो और बाबा उड़ जाए, अव्यक्त बन जाए, ये कर्मातीत फरिश्ता बन गए। तो हमको क्या बनना है, ऐसे ही कर्मातीत फरिश्ता बनना है, ठीक है, बाप समान माने कर्मातीत फरिश्ता बनना है, हाँ या ना, यस, हमको कर्मातीत फरिश्ता बनना है, कैसे बनेंगे, उसका पहला स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, कर्मातीत फरिश्ता बनने का पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहली बात आप देख ली, आप वो आप बन चुके होंगे कि हम पहले कर्मातीत से पहले विकर्माजीत बने। अब हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म तो नहीं होता, ये देख ले, नहीं होना चाहिए कोई विकर्म नहीं हो। अगर होगा भी नहीं, हम इतने पुराने भट्टी करने के लिए आए हैं, अभी कोई विकर्म नहीं होगा ना। अगर होता है उसको नहीं होना, होगा ही नहीं मैं समझता हूं। पहली स्टेज है विकर्माजीत, यानी विकर्म ना हो, पाप कर्म ना हो, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कौन सा है बोलिए, मैं बताता हूं। सेकंड स्टेप है विकल्पाजीत, हमारे में अब विकल्प भी नहीं आने चाहिए। विकल्प मीन्स बुरा संकल्प, देह अभिमान का संकल्प, वो भी नहीं होना चाहिए। बाबा को भी ये निश्चय है, बाबा को ये फेथ है कि मेरे ब्राह्मण बच्चों में अब विकल्प नहीं आते। और आप भी जानते होंगे नो विकल्प, विकल्पाजीत। देखिए विकल्प अगर आया तो उससे क्या नुकसान होगा, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। कर्म तो छोड़ो, पहले बाबा कहते बच्चे चलो, शुरू शुरू में कहते थे विकल्प आते हैं तो कर्म में नहीं आओ, अब उस जमाना गया। नो विकल्प, अगर आता है फौरन भगाओ उसको, एकदम बुद्धि से मन से निकालो, ओहो नुकसान हो जाएगा, आत्मा भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और डाउन चला जाऊंगा। कभी विकल्प नहीं आए, आप इस स्टेज को भी पार किया कर लिया होगा, विकल्पाजीत। अब थर्ड स्टेज कौन सी है बोलो, इसके अगली स्टेज जो बाबा कहते हैं व्यर्थ अतीत। अब जो कोई व्यर्थ आता है ना, व्यर्थ भी ना आए। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों में अभी व्यर्थ है, कई दफा बाबा कहते हैं व्यर्थ को, व्यर्थ पर विजय पाओ, व्यर्थ को खत्म करो, व्यर्थ किनारा करो, व्यर्थ को आने मत दो। तो व्यर्थ अतीत हो, व्यर्थ का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है व्यर्थ का, क्या परिभाषा है, है? ये क्यों बाबा कहते हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कैसे, ये क्यों क्या के बारे में है व्यर्थ। पहले हम बाबा ये मुरली में सुनाते थे, लेकिन उस दिन बाबा दादी गुलदार जी ने क्लास कराई व्यर्थ किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा बताई जबरदस्त। हमने कहा ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। दादी कह रही थी अभी आप बैठे हैं, अभी आप हिसार पहुंच जाओ, यहां बैठे 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 यहां है, संकल्प आपको हिसार का आ गया तो ये व्यर्थ है, समझे। व्यर्थ का यानी व्यर्थ का मतलब यह है कि जो कहा अभी काम का नहीं है, यानी व्यर्थ ये क्यों क्या तो है ही, वो तो मोटा मोटा रूप है, ये क्यों कैसे कर दिया इन्होंने, ऐसा भी यहां होता है, ये वो चीजें फालतू की जिसका कोई मतलब हमारे से नहीं है, वो तो है ही व्यर्थ। परंतु व्यर्थ की और परिभाषा है कि अभी आप यहां बैठे बैठे जो यहां चाहिए वो संकल्प करो, ये नहीं कि और फालतू के संकल्प करो, यानी फालतू। तो हमारी बहने जो थी ना, हमारी कूंज दादी थी, वो बाबा को लिखती थी फालतू है कोई चीज पड़ी हुई तो ब्रैकेट में FALTU लिखती थी, वो समझती थी फालतू शायद अंग्रेजी का शब्द है, समझो। तो फालतू संकल्पों को हटाओ, जिस संकल्प से हमारा अभी मतलब नहीं है वो संकल्प फालतू है, वो व्यर्थ है। तो थर्ड स्टेप है व्यर्थ अतीत। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों में भले अब विकल्प तो नहीं है और विकर्म तो है ही नहीं, विकल्प भी नहीं है, लेकिन व्यर्थ भी कम होगा, लेकिन क्या चीज कमी है, समर्थ कम है। बाबा कहते हैं मुरली में कई दफा कहा है कि बच्चों में भले संकल्प विकल्प नहीं है, व्यर्थ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन समर्थ बहुत कम है। तो थर्ड स्टेज जो है व्यर्थ अतीत, और फोर्थ स्टेज है साधारण अतीत। अभी हमारा जो संकल्प है साधारण चलते हैं, साधारण चलते हैं, कोई जिसका कोई फायदा कुछ नहीं है, साधारण चलते हैं। कोई संकल्प तो खाने पीने के संकल्प तो चलेंगे, लेकिन एक साधारण संकल्प, या दूसरा हम कहें न्यूट्रल संकल्प है, हैविंग नो वैल्यू। जैसे नहीं कोई स्कूटर पर किक लगा देता है और बैठ जाता है और न्यूट्रल पर खड़ी कर दे वो गियर, न आगे जाता न पीछे जाता है, पेट्रोल जा रहा है, टाइम जा रहा है, हमारा नाम आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, वहीं खड़े हैं। यानी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा गाड़ी भागेगी, अगर वो न्यूट्रल होगा तो गाड़ी वहीं रहेगी। हाँ नेगेटिव नहीं है तो ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो मेरे बच्चों के साधारण संकल्प होते हैं, न्यूट्रल संकल्प है, लेकिन कोई पॉजिटिव संकल्प भी कम है। तो यदि हम चाहते हैं आगे बढ़ना, बाप समान बनना, तो क्या करें हम? हम जो ये पॉजिटिव संकल्प हैं या शुद्ध संकल्प हैं, समर्थ संकल्प हैं, उसकी संख्या को बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, उसको बढ़ाएं। जब साधारण, जब वो शुद्ध संकल्प होंगे या पॉजिटिव संकल्प होंगे, ना वो विकल्प होगा, ना साधारण होगा और ना ही विकल्प वो व्यर्थ होगा। उसकी जगह हमने क्या कर दिया, जो न्यूट्रल गाड़ी थी, न्यूट्रल पर थी, उसको पॉजिटिव में बदल दिया। कुछ ना कुछ हम शुद्ध सोच रहे हैं। देखिए पॉजिटिव संकल्प या शुद्ध संकल्प, और कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, जो बाबा ने हमको पॉजिटिव संकल्प दिए हैं, गोल्डन संकल्प दिए हैं, उनको ही वास्तव में रिवाइज करना है। कौन सा पहला गोल्डन संकल्प है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मोस्ट गोल्डन, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं मस्तक मणि हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आत्मा के बारे में कितनी फ्लो है, कितने संकल्प है। मैं चमकता हुआ स्टार हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ज्योति कण हूं, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन सारे आत्मा के बारे में जो संकल्प हैं, ये शुद्ध संकल्प है। इनको आप इनको सोचिए, इनको आप मन में क्रिएट कीजिए संकल्पों को, तो क्या होगा, और कोई व्यर्थ आएगा नहीं। जब आप ये सोच रहे हैं कि देखिए इंसान के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, टू संकल्प कैन नॉट ओवरलैप, इकट्ठे नहीं आ सकते। व्हाट इज योगा? योगा मीन्स व्यर्थ को निकालिए, न्यूट्रल को खत्म कीजिए, तो शुद्ध संकल्प अपने में लाइए। यही पहले आत्मा के लिए, आत्मा का फ्लो कीजिए, फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स, यही शुद्ध संकल्प, पावरफुल या समर्थ संकल्पों को लाइए। तो उसमें क्या होगा, तो ना व्यर्थ होगा ना वो होगा। फिर उसके मैं कहां का हूं, परमधाम का वासी हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, जो जो बाबा ने, बाबा के गुणों को याद करें, अपने गुणों को याद करें, घर को याद करें, बाबा को संबंधों से याद करें। क्या आजकल क्या है, वो बाबा ने कहा है ना, बिंदु बन बिंदु को याद करो। अभी हम बैठे थे, अभी 5 मिनट पहले बिंदु बन याद कर रहे होंगे तो कोई झुटके खा रहे थे, आई एम सॉरी कहते हुए, नींद कर रहे थे, आंखें बंद थी, तो क्या हुआ फिर ये? कहने का मतलब, अगर हमारे में शुद्ध संकल्प का संचार हो रहा है, कुछ हम शुद्ध सोच रहे हैं कुछ, तो उससे क्या होगा कि हमारे, हम बताएं, पॉजिटिव संकल्पों से, उनके खजाने से पावर आती है और प्योरिटी आती है। सत्युग में क्या दो क्राउन कौन से होते हैं? क्राउन ऑफ लाइट, प्योरिटी, और क्राउन ऑफ माइट, पावर। वो किससे आती है? ये पॉजिटिव संकल्पों से या प्योर थॉट्स से, उससे लाइट भी आती है और माइट भी आती है। अगर हम चाहते हैं बनना श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने, तो दो ताज वाले हैं, डबल क्राउन किंग है, बिल्कुल उसका एक ही तरीका है कि हम पॉजिटिव संकल्पों का संचय करें, उसको जमा करें हम। भले अगर आप पहले पॉजिटिव संकल्पों में जाएंगे, करते 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 फिर क्या, मैं और मेरा बाबा इसी संकल्प में बैठ जाएंगे। पहले शुरू तो करना पड़ेगा, ये यानी शुद्ध संकल्पों से शुरू करना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां का हूं, ये जो है इस पर मनन करते 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 अंत में फिर मैं और मेरा बाबा उसे लाइट माइट शक्तियों में ले रहा हूं और सब भूल जाएंगे। पहले तो आपको ये मेडिटेशन जिसे कहो या शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना पड़ेगा ना। यानी व्हाट इज योगा, योगा मीन्स फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स, होते ना वो आबशार होती है, नो विदाउट इंटरप्शन। यानी हमारे मन में ये शुद्ध संकल्प आते रहे। कितने बाबा ने विचार दिए, शुद्ध संकल्प दिए, कितना अच्छा है। बाबा कहता है चक्कर घुमाओ, चक्करवर्ती राजा बन जाओ। मुझे तो आश्चर्य लगता है, चक्कर फिराओ क्या बन जाएंगे आप बताइए। आज इतने झगड़े होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो माता है और कुछ मत करो, चक्कर ही घुमाते रहो। तो चक्करवर्ती भगवानों वाच कौन बोल रहा है, ये बाबा ने कहा है बच्चे चक्कर फिराओ और चक्करवर्ती राजा बन जाओ। क्या कितनी बड़ी बात है, चक्कर फिराना तो बाबा ने अच्छा तरीका बताया। मुझे सबसे अच्छा जो बाबा के लास्ट के जो ये है युक्ति बताई है, पांच स्वरूपों को याद करो। करते हैं आप सभी, हाँ या ना करते हैं? बाबा ने काम दिया था बहुत पहले, 2 साल पहले, बचे सारे दिन में वो 8 बार इसको रिवाइज करो, यानी 8 बार इसको करो। यानी अगर नहीं करते हो तो रात को सोने से पहले 8 बार करके सुबह, पहले सुबह मत, ये भी बाबा की मुरली में था। तो अब देखिए आप करते कि नहीं करते, बहुत सुंदर तरीका है। अगर इसी आप चक्कर में लगे रहेंगे तो कोई व्यर्थ भी नहीं आएगा, विकल्प तो क्या कुछ वो सारा वो शुद्ध संकल्प में मरम्मत करते चलिए। मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चलता हूं जब प्रथम स्टेज कौन सी हमारी, वो निराकारी स्टेज, फिर आकारी फरिश्ता स्टेज, फिर निर्विकारी देवता स्टेज, अलंकारी पूज्य स्टेज और निरहंकारी ब्राह्मण स्टेज। ये 5 स्टेजेस है। 5 शब्द भी आप याद कर लो, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी। इन 5 स्टेजों को 5 शब्द भी आएंगे, सारा चक्कर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या बात है भाई, बहुत सिंपल और सहज तरीका है अपने को इसमें बिजी रखने का। याद की इतनी यात्रा है, तो वास्तव में तो यात्रा यही है, यात्रा माने चलना। आपने निराकार स्टेज में कहां पहुंच गए, परम धाम पहुंच गए, कितना चल के चले गए आप, एकदम उड़ के पहुंच गए। फिर आप सूक्ष्म मतल में आए तो वो भी आपका ट्रैवलिंग इन स्पेस हो गया। ट्रैवलिंग इन स्पेस भी है और ट्रैवलिंग इन टाइम भी है। अगर आप जब सत्युग में देवता हुए तो आप वहां ट्रैवल करके पहुंच गए इन टाइम। 5000 अभी हम बैठे हैं, 5000 वर्ष पहले चले गए, हम तो पहले देवता थे, कितना 5000 पार कर लिया। फिर आप द्वापर में आप पूज्य, देखो बाबा पूज्य कहते हैं, हम द्वापर में पुजारी बनते हैं, बाबा कहते हैं पुजारी मत कहो, हम पूज्य थे, तो वो इतना महान थे हम, तो वो आपका द्वापर में ये भी ट्रैवलिंग हो गया। फिर संगम पर पहुंचे ब्राह्मण, ये भी ट्रैवलिंग हो गया। तो वास्तव में तो यात्रा यही है, यात्रा 2 प्रकार की है, ट्रैवलिंग इन स्पेस भी है और ट्रैवलिंग इन टाइम भी है, ये यात्रा है। इस यात्रा को हम बार बार इसी में लगे रहे। अगर आप 7 दिन भी और कुछ मत करो, इसी चक्कर में चलते रहो, फरिश्ता बन ही जाएंगे। जहां से आप पास करेंगे लगेगा कि फरिश्ता जा रहा है। आप पुरुषार्थ करें तो रियल तरीके से, और कुछ याद ना है, और कुछ याद करना भी नहीं, हम बताएं भाई कुछ काम आने वाला नहीं है। सुन लीजिए, आज बाबा ने ज्ञान को क्या कहा, ज्ञान के बारे में देखो मुरली में ज्ञान के बारे में क्या कहा, ज्ञान कुछ नहीं। बाबा ने कहा योग बहुत अच्छा, योग होना चाहिए, योग बल चाहिए ना, याद बल चाहिए। बल्कि आज का देखो वो सन्यासी योग बल कहते, हम याद बल कहते। याद ये यही याद है, अपने को याद करो, घर को याद करो, बाबा को याद करो, चक्कर को याद करो, इसमें अपने माइंड को बिजी रखो और कुछ याद ना। हम तो जब शांति वन में चलते हैं ना, पूरा चक्कर लगाते हैं, हमारा 1.25 किलोमीटर का चक्कर है, एक ही बार रिवाइज होता है बस। हम उसको बहुत एलोंगेट करते हैं, लंबा करते हैं। हम कहते हैं निराकारी स्टेज, अपने को याद करते हैं, अपने गुणों को याद करते हैं, घर को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा गुणों को भी याद करते हैं, साथ साथ उनके संबंधों को भी याद करते हैं। याद को रमणीक बनाओ, सूखा सूखा नहीं, मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, वाट इज बिंदु, आई टेल यू बिंदु है, बिंदु को देखो, अगर आप बिंदु को देखते रहेंगे केवल, हैविंग नो डायमेंशन, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो विड्थ, नो हाइट, व्हाट इज दैट, क्या करेंगे उसको आप? जब तक उसको आप ज्ञान का सिंधु नहीं कहेंगे, पवित्रता का सिंधु नहीं कहेंगे, शांति का सिंधु नहीं मानेंगे, जब उसके गुणों को सामने नहीं लाएंगे तो कैसे मिलेगा? वो तो दुनिया वाले ब्रह्म को याद करते हैं, वो दैट इज नथिंग। हमने बिंदु बिंदु को करो साथ साथ, कुछ ना कुछ एक आध गुण तो साथ जरूर होगा, मैं लाइट हूं, माइट हूं, उसके अलावा तो बिंदु क्या होगा? मैं एक, वो राज बाबा ने कहा एक विचार पर कंसंट्रेट करो, ऐसा वो था स्लोगन, वो था वरदान, एक विचार, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। हम बता दें आप, भगवानों वाच बाबा अवैध बाबा ने कहा है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, इफ यू डोंट रिवाइज इज इट डिफिकल्ट टू रियलाइज। इसको बार बार याद करो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, तो हमारा, हमने बनना कर्म थी फिश्ता बाप समान, तो हमारा यही शुद्ध संकल्प रहेंगे। तो हम बाबा, जब हम देखा बाबा को देखते थे, उनका हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प क्या था? विशेष था, साधारण नहीं था। किसी को ऐसे देख लेंगे ना वो उड़ जाएगा, हम बताएं आपको, किसी पे ऐसे हाथ रख देंगे, वाह फूला नहीं समाएगा, जो बाबा ने हाथ रख दिया मेरे पर। तो इस प्रकार से हम भी तो बाप समान कैसे बनेंगे? ऐसे बनना होगा ना कि हमारा हर कदम, हर बोल, हर कर्म, हमारा हर संकल्प विशेष हो, तब तो बाप समान बनेंगे। तो क्या करना है हमको? ये रिवाइज, जब सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करते चले, हर वक्त बिंदु बन बिंदु को याद नहीं कर सकते ना, चलते फिरते कैसे करेंगे? देखो बाबा ने क्या क्या, हर हर कर्म में बाबा को साथ रखा, हर कर्म में क्या क्या, मैं खाना बाबा के साथ खाना खा रहा हूं, बाबा मुझे स्नान करा रहा है, जब भी बाबा की बात को, मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है बाबा को साथ रखा उन्होंने, किसी प्रकार से भी उन्हें बिंदु बनकर तो नहीं कहा साथ रखो, ही इज नियरेस्ट टू मी। और देखो बाबा ने कहा कभी अपनी महिमा नहीं कराई। एक बार बाबा पटियाला में हम जब पढ़ते थे आए, फूल तक हमारे से नहीं लिया, हम तो फर्स्ट टाइम बाबा से मिले थे, ना हार ना फूल ना कुछ, नथिंग। कोई वो कविता पढ़ना शुरू करेगा उनके, जब उनका ब्रह्मा बाबा की महिमा करेगा बस बंद करो, कोई असर, इतने निरहंकारी बाबा थे, बेफिक्र बादशाह थे, आई टेल यू बेफिक्र बादशाह। कई मेरे सामने लोग चले गए जिसने बाबा ने जिसकी पालना की, उनको पालना की, पोषा, उसको खिलाया पिलाया, ये किया, छोड़ के चले गए, बाबा को थोड़ा फिक्र रहा, ड्रामा, यानी ड्रामा पर इतना बाबा को होता था कि जो हो रहा है ड्रामा हो रहा है, सब ड्रामा अनुसार ठीक है, बेफिक्र बादशाह। आप हिस्ट्री सुनी होगी, खाने के लिए दिया, इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, तो देखो बाबा ने कहा ऊपर वाला जाने मैं क्या जानू। तो इस प्रकार से बेफिक्र बादशाह थे, ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं बताऊं आपको, हमारी हमारा एक काम था चित्र बनाना, ये चित्र बहुत चित्रशाला हमने बनाई थी, बाबा कहते ये बनाओ ये बनाओ, देखो ये सीढ़ी का चित्र आप देखेंगे, लगा दो यादव कौरव पांडव फिर से उपस्थित है, यादव ये हैं, कौरव ये हैं, पांडव हम हैं, पांडव गवर्नमेंट, तीनों का कोट ऑफ आर्म्स बनाओ चित्र, बाबा कहते वहां मुरलियों में कहता कोट ऑफ आर्म्स बनाओ, एक वो यूरोपियन पीपल दिखाओ, पांचों जो शक्तियां थी ना उनके कोट ऑफ आर्म्स दिखाओ, एक गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट का तीन शेर वाला दिखाओ, एक हमारी पांडव का त्रिमूर्ति दिखाओ, और लिख दो नीचे प्रीत बुद्धि विजयंती और प्रीत बुद्धि विनिश्चित, आप बताइए कौन बोल रहा है भगवान, हम लिखते थे। अभी देखो ये चित्र बना हुआ, ये बनवाया था हमने, बाबा कहता है उसमें बिठाओ, हुसैनलाल नंदा उस वक्त होम मिनिस्टर था या अपनी आर्थिक मिनिस्टर था, उसको कांटों की सेज में बिठा दो, देखा ना ये बैठा हुआ है, और उसके पीछे तकिया लगाओ, कौन सा फाइबर प्लान का, देखो तकिया है और भीख मांग रहा है, आप बताइए क्या बाबा ऐसे कहते थे, ये बनाओ ऐसे बनाओ लोगों को भेजो। एक दफा बाबा ने हमको जगदीश जी मिलने के लिए, उसको प्रेसिडेंट राधा कृष्णन को एक बड़ा मेमोरेंडम बना के ले गए, हम भी साथ थे, दादी गुलदार जी हम साथ गए, हम वहीं रहते थे, ऐसा उन्होंने पढ़ के दिया कि वही यादव कौरव पांडव फिर से उपस्थित है, एटॉमिक वार होगी और इनका विनाश, जो सब बताया, तो उसने कहा दोबारा पढ़ के सुनाओ मुझे कि क्या 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 लिखा है, यानी ये महाविनाश अटॉमिक वार सब होगी, उन्होंने सुना दिया बताओ। तो बाबा इतने अथॉरिटी से बात करते थे, अथॉरिटी भी थे और बेफिक्र बादशाह भी थे, बात कमाल थी, कोई परवाह नहीं बताऊंगी। इस प्रकार से ऐसे बाबा बाबा तो कहता अब क्या करना है, एक एक संकल्प हमारा शुद्ध हो। अब पहले कहते थिंक बिफोर यू स्पीक, फिर कहते थिंक बिफोर यू एक्ट, नाउ बाबा सेज थिंक बिफोर यू थिंक, व्हाट यू आर थिंकिंग। दादी जानकी जी कहती है आजकल वो कि थिंक बिफोर यू थिंक, क्या सोच रहे हो आप, पैदल जा रहे हैं क्या सोच रहे हैं, नथिंग, खाना खा रहे हैं कोई सोच नहीं रहे, नथिंग, हमारा टाइम नथिंग में बहुत जा रहा है हम बता दें, एंड दैट नथिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग। उस नथिंग में अगर हम शुद्ध संकल्प करते रहेंगे, शुद्ध संकल्पों को लाएंगे तो हमारी कमाई हो जाएगी। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते 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 हम शुद्ध बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे और बाप समान ट्रांसपेरेंट फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करना है। और जो आपने भट्टी की ठीक है, लेकिन यहां तो करेंगे ही, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं शुद्ध हूं, बार 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 रिवाइज करो। हम भी कोशिश करते हैं, हमेशा तो हम नहीं करते, भूल जाते हैं, लेकिन बाबा कहते 8 घंटे होना चाहिए, चलो 4 घंटे हो, कम से कम इन शुद्ध संकल्पों को बार 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 रिवाइज करो। अभी आप यहां से नीचे जाएंगे, कुछ पानी पियेंगे, कुछ करो, यही संकल्प चलता रहे। और संकल्प मत आने दो, कोई प्लानिंग की दरकार ज्यादा नहीं है, हम ये प्लान करें वो प्लान करें, अपने लौकिक की प्लानिंग की भी दरकार नहीं है, बाबा सब करेगा ठीक, हम गारंटी है बाबा की, हम बताएं आपको। आप देखो हमारी प्रिंटिंग प्रेस चल रही है नीचे, छोटे से गांव है, बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, आस पास 200 किलोमीटर प्रिंटिंग प्रेस आया नहीं। हम जब आए थे यहां तो कोई ना बुश मिलता था ना बेरिंग मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था, फिर भी 23 साल से चलती आ रही, कौन चला रहा है, ऊपर वाला चला रहा है। हमारे लोग जो जान पहचान के भी कहते हैं दिल्ली वाले कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ऊपर वाला चला रहा आपका बाबा, वो मानते हैं इस बात को, ये बताइए। इसी तरीके कुछ घबराओ मत, चाहे घर का काम है चाहे कुछ है चाहे सेवा है चाहे कुछ है, लेकिन करण करावन हार बाबा है, ये सोचो बाबा का काम है, मैं वो निमित्त बन के कर रहा हूं। तो अगर ये थिंकिंग आपकी होगी, थिंक बिफोर यू थिंक, हम क्या करते हैं क्या सोच रहे हैं, वो अगर ये हमारी थिंकिंग बदल दी बदल गई, तो अगर थिंकिंग हमारी शुद्ध और ये पावरफुल होगी, समर्थ होगी, तो व्यर्थ भी समाप्त, तो विकल्प का तो नाम निशान गुम, और हम क्या बन जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हुआ, बाबा तो भी व्यर्थ के लिए कहते हैं ना, समर्थ बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे और बाप समान अवश्य बन जाएंगे, और बनना भी हम सभी को है, और कहां कौन बनने वाले हैं, देखो सब आप लोगों को बनना है, हम सभी को बनना है। अभी जो पीछे वाले आएंगे तो बेचारे उनको देरी लग जाएगी, जो इतने साल से चल रहे हैं भट्टियां कर रहे हैं ये कर रहे हैं, बनना भी आपको और आप बनेंगे भी जरूर, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहते कौन बनेंगे, आप बनने वाले हैं। और एक बात मैं कह के बंद करता हूं, एक दादी जानकी जी बात सुनाती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहती हैं कि एक वो मत करो जो किसी की चोरी करता है, किसी की चीज उसकी चीज उसकी चीज, उसे क्या कहते हैं, पराई चीज चोरी कर, उसे क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं उसको जो पराई चीज ले ले, हैं हाँ, वो नहीं बनना पूरा। और किसी के अवगुण मत लो, और गुणों का सागर तो बाबा उसे जिन मर्जी गुण ले लो, किसी के पराए पराई चीज या पराई जेवरी उसका अवगुण चोरी करके अपने दिल में रख लेना, अपने कपट में छुपा देना, पराई चीज को मत, नहीं चोर नहीं बनना है। दूसरा, पुरानी चीजों को जो इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं, हाँ जी कबाड़, वो भी नहीं बनना है। आज बाबा ने कहा था, आज बाबा ने कहा है कि जो पुराने हटाओ, पुरानी बात को भूलो, आज मुरली में था पता ही कि पुरानी बात को भूल जाओ, किसी के ना अवगुण चोरी करो, उसको अपने कपट में रखो, और पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी चीजों को भी तिलांजलि दिल के फ्रेश हो जाओ। अगर आपने कोई भूल पे कहा, भूल पे भूल भूल को पर याद करते रहेंगे तो और धब्बा बन जाएगा, मानो कोई गलती हो भी गई, डोंट थिंक ऑफ दैट, फॉरगेट, फॉरगेट योर सेल्फ ऑल्सो ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अपने को भी माफ कर दो, मेरे से भूल भाई होगी थी, आई फॉरगिव इट, फॉरगिव मी आल्सो एंड फॉरगिव अदर्स। इस प्रकार से हम फॉरगेट फॉरगिव सबकी दुआएं लेते रहेंगे और दुआएं देते रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को सबको सुख देंगे, सुख लेंगे और सदा खुश रहेंगे, तो बाप समान तो फरिश्ता बन ही जाएंगे और बनना भी हमको ही है। ओम शांति, ओम शांति।